कोशिश करेंगे जरा जोर से बोलने की ताकि आपको भी क्लियरली आवाज आ जाए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिल लजीन अस्तफा अम्मा बाद औजु बिललाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम वकذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون देखिए चलेगा माइक की आवाज करती है, मुझे माइक की आवाज रेज करना नहीं। अच्छा अब बताएं आप लोगों को आवाज अभी भी हल्की आ रही है? आवाज के वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाएं आपको। चलो ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। तो अगर किसी को हल्की लग भी रही है तो जरा भी हाँ, इसलिए मैंने वॉल्यूम बढ़ाया है माइक का। ठीक है फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इज़ यतनाज़ऊना बैनहुम अमरहुम फ़क़ालू बनू अलैहिम बुनियाना रब्बुहुम अअलमु बिहिम قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم। काफी दिनों के बाद हमारी क्लास दोबारा स्टार्ट हो रही है। बीच में हज ब्रेक आई और ईद उल अजहा भी आप लोगों ने मनाई जो हज पे नहीं गए थे, तो थोड़ा सा रिकैप भी करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा ये कि हमारा एक नया सिस्टम है आज जो ऑनलाइन कनेक्टेड है, तो दे आर नॉट यूजिंग गो टू मीटिंग एनी मोर, वी हैव स्विच्ड ओवर टू जूम। ये तो वो एक नया सिस्टम है और अपेरेंटली अल्हम्दुलिल्लाह पहले सिस्टम से ज़्यादा बेहतर सिस्टम है। होपफुली एवरीथिंग एवरीवन विल बी कंफर्टेबल विद इट सून इनफ इंशाल्लाह। तो पिछली क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे वर्स नंबर 21, सही। इसके अंदर हमने वो वाक़या पढ़ा था कि अस्हाबे कहफ जब जागे थे अपनी नींद से। कितना अरसा अस्हाबे कहफ सोए? 309 साल, 309 years। अच्छा, और इनके जागने की वजह क्या बनी? कैन वन ऑफ यू एक्सप्लेन? हमजा विल एक्सप्लेन। I will repeat for the classes here in chat. Okay. Right. Sahi. So, question was के असहाबे कहफ जो 309 साल सोते रहे और उसके बाद एकदम से जाग गए, तो उसकी वजह क्या बनी? तो उसकी वजह जैसे कि अल्लाह ताला ने भी यहाँ पर इस आयत के अंदर फरमाया है कि कज़ाले का आसरना अलैहिम, कि हमने इस तरीके से उनको लोगों के सामने दिखाया। वी मेड देम नोन टू द पीपल लियअलमु अन्न वअदल्लाहि हक्कुम, ताकि ये लोग जान लें, उनको इल्म हो जाए कि अल्लाह का वादा सच है। क्या अल्लाह ताला का वादा सच है? अल्लाह ताला ने सारे इंसानों से वादा किया है कि तुम इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार करके जब मर जाओगे, इस दुनिया से तुम चले जाओगे तो एक दिन मैं तुम लोगों को जिंदा करूंगा, दोबारा से जिंदा करूंगा। ये अल्लाह ताला का वादा है। दिस इज ए प्रॉमिस, दिस इज नॉट समथिंग दैट अल्लाह हैज शोन टू अस। ठीक है, कि अल्लाह ने हमें दिखाया नहीं है ये कि देखो मैं तुम्हें इस तरीके से मैंने तुम्हें जिंदा कर दिया है। ठीक है, वादा किस चीज के बारे में हम करते हैं? वादा तो हम फ्यूचर के बारे में करते हैं ना, पास्ट के बारे में तो हम वादा नहीं करते कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम 2008 में पैदा हुए थे। हम कभी ऐसा कहते हैं किसी को कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि यू वर बॉर्न इन 2008, वर यू बॉर्न इन 2008? समथिंग इज माय माशाल्लाह, आई डोंट नो, सो आई वाज गोना से 1974, दैट्स व्हेन आई वाज बॉर्न। तो खैर, ठीक है, तो हम पास्ट के बारे में वादा नहीं करते। उसी तरीके से हम प्रेजेंट के बारे में जो चीज चल रही है ना, कि मैं वादा करता हूँ कि तुम बुक रीड कर रहे हो, तुम किताब खोल के बैठे हुए हो, तुम किताब पढ़ रहे हो। ठीक है, तो हम प्रेजेंट के बारे में भी किसी से वादा नहीं करते। तो वादा किस चीज के बारे में करते हैं? वादा हम फ्यूचर के बारे में करते हैं कि जो चीज अभी नहीं हुई होती है उसके बारे में हम प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं। तो अल्लाह ताला का वादा यह है कि तुम जब मर जाओगे तो तुम उसके बाद खत्म नहीं हो जाओगे। यू विल नॉट बी गॉन फॉर एवर, दिस इज नॉट द एंड ऑफ यू। ठीक है, दिस इज जस्ट ए टेम्पररी ट्रांजिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो इसी को हम उर्दू में कहते हैं ना, इंतकाल हो गया। इंतकाल का मतलब क्या होता है? कि आप मुंतकिल हो गए। मुंतकिल मींस यू ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, दैट्स व्हाई वी से इंतकाल हो गया, मुंतकिल हो गए। ठीक है, जैसे आप रियाज से आप कराची मुंतकिल हो गए, कराची से आप इस्लामाबाद मुंतकिल हो गए। ठीक है, तो ये है अल्लाह ताला का वादा। और अल्लाह ताला ने इस वादे को हमारे सामने प्रूव करने के लिए कि मेरा वादा सच्चा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा तुम लोगों से। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए हमें अल्लाह ताला हमें मुख्तलिफ तरीकों से साइंस दिखाते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें इंसिडेंट्स हमारे सामने होते हैं कि जिससे कि हमें इस बात के ऊपर यकीन आ जाए कि अल्लाह ताला झूठ नहीं बोल रहे, अल्लाह ताला का वादा बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल सच है। तो इस तरीके से हुआ कि इस जो बादशाह था फैदूसिस, जो कि एक नेक बादशाह था, बिलीवर बादशाह था, ठीक है, तो उसके ज़माने में बाकी सब कुछ तो बहुत अच्छा था, सारे लोग नेक थे, तकरीबन सारे लोग ही मुसलमान थे और नेक थे। लेकिन शैतान जो है ना, वो अपनी हरकतें करता रहता है, वो कोशिश करता रहता है कि किसी तरीके से लोगों का ईमान ख़राब करे, उनके ईमान में ना वो कोई फॉल्ट पैदा करने की कोशिश करे। तो वो कोशिश करता रहता है, करता रहता है, और कभी ऐसा होता है कि हम जो है ना वो उसकी कोशिश से इफ़ेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके इफ़ेक्ट होने की वजह क्या होती है कि हम कुछ ना कुछ ऐसी गलत काम कर रहे होते हैं कि जिसकी वजह से शैतान हमारे ऊपर इफेक्ट कर जाता है। ठीक है, तो गलती असल में हमारी अपनी होती है, हम ही खुद कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, तो उस गड़बड़ के नतीजे में फिर शैतान हमारे ऊपर हमला करने में कामयाब हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इस फैदूसिस के जो मुल्क में लोग रहते थे, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी। ठीक है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला गेव शैतान एक्सेस ओवर देम, ठीक है, एज अ पनिशमेंट। तो शैतान के जब एक्सेस हो गया उन लोगों के ऊपर, तो उसने ना आकर के उनके जहन के अंदर ये डाउट क्रिएट कर दिया कि देखो बाकी सारी चीजें तो चलो ठीक है, लेकिन मरने के बाद जब तुम्हारी बॉडी जो है वो जो जमीन के अंदर मिल जाएगी, बिकॉज जब आप इस फिजिकल बॉडी को जो कि इंसान की हो, या कभी आपने किसी एनिमल को भी अगर बेरी किया हो, कुछ लोग घरों के अंदर पेट्स रखते हैं, तो पाकिस्तान वगैरह में तो जगह होती है, घर के अंदर गार्डन होता है, बैकयार्ड होता है, तो अगर कोई पेट हमारा मर जाता है ना, तो हम बाकायदा उसको बैरी करते हैं। बच्चों का ये भी एक होता है कि जी अपने पेट को बैरी करें, तो उस जगह को आप जब आप कुछ अरसे के बाद खोल करके देखें तो आपको नजर आएगा कि उसकी बॉडी तो डिकम्पोज हो गई। ठीक है, उसकी बॉडी बिल्कुल खत्म हो गई। तो इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी भी खत्म हो जाती है। तो खाली क्या हाँ, क्वेश्चन है क्लास में से कि हर इंसान गलती करता है, राइट? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु बनी आदम खताउन, हर सन ऑफ आदम, मीनिंग हर ह्यूमन बीइंग खता करने वाला है, गलती करने वाला है। तो क्या हर ह्यूमन बीइंग के ऊपर शैतान मुसल्लत हो जाता है? ठीक है, तो फैदूसिस के इन थोड़े से लोगों के ऊपर खाली शैतान क्यों मुसल्लत हुआ, सबके ऊपर क्यों नहीं हो गया, राइट? ठीक है, तो इसका जवाब अगर हम क्लास से पूछें क्योंकि इसका जवाब हम पिछली क्लास में दे चुके हैं, काफी दिन हो गए, मुस्तफा भाई भूल गए। इसका क्या जवाब है? हमने क्लास में एक दफा ये समझाया था। एनीवन फ्रॉम इधर ऑफ द क्लासरूम्स? चलो, वी हैव थ्री क्लासरूम्स, वन फिजिकल, टू वर्चुअल। किसी को जवाब इसका याद है कि शैतान कब मुसल्लत हो जाता है इंसान के ऊपर? गलती तो हर इंसान करता है, लेकिन शैतान हर गलती के नतीजे में तो मुसल्लत नहीं होता। अच्छा, तो एक जवाब यह था कि अगर मेजर सिंस करें तो मेजर सिंस की वजह से फिर शैतान मुसल्लत होता है। नॉट क्वाइट। जी दाऊद, आपके पास? हाँ माशाल्लाह, मोर लेस यही जवाब दिया था हमने कि जब इंसान गलती करता है ना, तो गलती तो हर इंसान करता है, ठीक है, हर इंसान से गलती हो सकती है और होती रहती है हम सब से, लेकिन जब हम गलती करते हैं तो अल्लाह ताला फिर हमें रिमाइंडर्स भेजते हैं, ठीक है, किसी भी शक्ल में रिमाइंडर भेजते हैं। कभी हमें कोई इंसान भेज देते हैं जो कि हमें याद दिलाता है कि भाई आप ये काम गलत कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। कभी इंसान, अल्लाह ताला जो है वो किसी बुक के अंदर कोई मैसेज लिख करके हमारे सामने वो बुक पहुंच जाती है, ठीक है, और वो बुक हम पढ़ते हैं, हमें याद आ जाता है कि हाँ ये काम तो मैंने भी किया था, बुक में लिखा हुआ है कि ये गलत काम है, तो फिर उससे एहसास हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला मुख्तलिफ रिमाइंडर्स हमें भेजते रहते हैं। तो जो इंसान उन रिमाइंडर्स के ऊपर तौबा कर लेता है सुन करके कि हाँ मैंने गलती करी थी, और उसको नदामत हो जाती है, शर्मिंदगी हो जाती है, और वो तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला उसकी गलती को माफ़ कर देते हैं। फिर वो दोबारा गलती करता है, क्योंकि वो कमज़ोर है बेचारा, उसके अंदर बहुत सारे फॉल्ट हैं, तो वो दोबारा गलती कर लेता है, फिर अल्लाह ताला रिमाइंडर्स भेजते हैं, फिर वो तौबा कर लेता है, फिर गलती करता है, फिर रिमाइंडर्स भेजते हैं, फिर तौबा कर लेता है। तो ऐसे शैतान फिर मुसल्लत नहीं होता उसके ऊपर। शैतान उस वक्त मुसल्लत होता है जब वो गलती करे, उसके पास रिमाइंडर्स आए, लेकिन वो रिमाइंडर्स को एक तो इग्नोर करे, दूसरा उससे भी ज्यादा बुरा काम करे ना, कि वो रिमाइंडर्स का दुश्मन बन जाए। ठीक है, कोई उसको रिमाइंड करा रहा है तो उसके साथ भलाई कर रहा है ना, वो खैरख्वाही कर रहा है, उसके उसकी वेलबींग का काम कर रहा है कि भाई आप गलती कर रहे हैं, आप तौबा कर लें, माफी मांग लें अल्लाह ताला से, आप शर्मिंदा हो जाए, अल्लाह ताला माफ कर देंगे। लेकिन वो उसकी बात सुनने के बजाय उल्टा उसको डांटना शुरू कर दे, उल्टा उसके ऊपर गर्म होना शुरू कर दे, उसका दुश्मन बन जाए, ठीक है। तो ऐसा शख्स जो होता है ना, ये अल्लाह ताला को बहुत बुरा लगता है, ठीक है। फिर ऐसे शख्स के ऊपर शैतान मुसल्लत होता है। तो हर गलती करने वाले के ऊपर मुसल्लत नहीं होता, बल्कि जो गलती करने के बाद इंसिस्ट करे, और इंसिस्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये कि रिमाइंडर देने वाले के खिलाफ हो जाए, उसका दुश्मन हो जाए, ठीक है। ये शख्स जो होता है ना, फिर अल्लाह ताला इससे दुश्मनी करते हैं, क्योंकि देखें रिमाइंडर्स अल्लाह ताला जो भेजते हैं ना, बुक के जरिए से रिमाइंडर भेजते हैं, तो बुक के जरिए से रिमाइंडर भेजते हैं तो वो इतना ज्यादा मसला नहीं होता कि अगर हम बुक की बात ना माने, ठीक है, क्योंकि बुक की इंपॉर्टेंस तो होती है, लेकिन बुक की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, ठीक है। तो हम देखें बुक जो होती है वो एक लिविंग थिंग तो नहीं होती है ना, वो एक नॉन लिविंग थिंग होती है, ठीक है। वो कोई आपसे आकर के कॉन्वर्सेशन नहीं करती, आपको जो है वो नसीहत नहीं करती, आपका हर चीज का ख्याल नहीं, वो तो उसके अंदर एक मैसेज लिखा हुआ है, आपने पढ़ लिया, आपको पता लग गया कि हाँ मैंने गलत काम कर लिया, ठीक है, लेकिन दैट्स अबाउट इट। लेकिन जब अल्लाह ताला कोई ह्यूमन बीइंग भेजते हैं ना आपके पास रिमाइंड करवाने के लिए, ठीक है, तो ये जो ह्यूमन बीइंग होता है ना, ये ह्यूमन बीइंग कभी तो आप जैसा ही होता है, वो भी गलती करने वाला गुनाहगार किस्म का आदमी होता है, बस थोड़ा सा आपने आपको आके नसीहत उसने कर दी, ठीक है, तो चलो भाई उसको आपने इग्नोर कर दिया तो इट्स नॉट सच अ बिग डील। लेकिन कभी ऐसा होता है कि ये जो ह्यूमन बीइंग्स आपके पास आते हैं ना, ये ह्यूमन बीइंग्स असल में अल्लाह ताला के फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, दे आर वेरी स्पेशल पीपल टू अल्लाह, ठीक है, जिसको हम उर्दू में या अरबी में वली कहते हैं, औलिया अल्लाह कहते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये बड़े स्पेशल लोग होते हैं अल्लाह ताला के लिए। तो अगर कोई इनका दुश्मन बन जाए ना, इनको जलील करना शुरू हो जाए, इनको बुरा भला कहना शुरू हो जाए, ठीक है, इनकी गीबतें करना शुरू हो जाए, ठीक है, तो ये चीज फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि यू हैव सिंस यू हैव प्रोक्लेम्ड ए वॉर अगेंस्ट माई वली, अगेंस्ट माई फ्रेंड, तो देन आई विल एक्चुअली अनाउंस वॉर अगेंस्ट यू, ठीक है, बिकॉज एनिमी ऑफ योर फ्रेंड इज योर एनिमी। ऐसे ही होता है ना, स्कूल के अंदर आपको कोई बहुत अच्छा दोस्त हो, ठीक है, और कोई आकर के उसके साथ दुश्मनी करना शुरू हो जाए, तो क्या आप उस दुश्मनी को अपने अपने खिलाफ तस्वर नहीं करते? आप कहते हैं भाई मेरे इतने अच्छे दोस्त के साथ तुमने दुश्मनी करी, तुम उसको जो है वो तकलीफ पहुंचा रहे हो, तुम उसको, ठीक है। तो फिर अगर आपके पास पावर होती है, अगर आप ताकतवर होते हैं, अगर आप स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना, तो फिर आप कहते हैं ओके, तुम अपने दोस्त को कहते हैं कि तुम तो जरा साइड में बैठो, ठीक है, आई विल टेक योर रिवेंज फ्रॉम योर एनिमीज, आई विल टेक द रिवेंज ऑन योर बिहाफ, ठीक है, बिकॉज यू आर वीक, आई एम नॉट वीक, आई हैव कंट्रोल, आई हैव पावर, ठीक है ना। बिल्कुल यही मामला अल्लाह ताला के साथ होता है कि जब अल्लाह ताला के किसी वली के साथ कोई दुश्मनी करता है, तो वो वली तो इंसान होता है ना, आदमी होता है, ठीक है, तो अल्लाह ताला फिर उस वली की तरफ से फिर अल्लाह ताला जवाब देते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसका ये वाला मामला बहुत खराब हो जाता है, और इसकी वजह से फिर अल्लाह ताला शैतान को, यानी एनिमीज को, शैतान क्या है, हमारी एनिमी है, ठीक है, वो कोई हमारा दोस्त तो कभी भी नहीं बन सकता, वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि हम जन्नत में जाएं, वो कभी भी नहीं चाहेगा दुनिया के अंदर अच्छे से रहें, ठीक है, तो वो तो एनिमी है ना, तो अल्लाह ताला फिर एनिमी को हमारे ऊपर कर देता है। ये ऐसे ही है जैसे कि हम दुनिया के अंदर देखते हैं ना कि जी मुस्लिम जो है वो कभी किसी से पिट रहे हैं, कभी किसी से पिट रहे हैं, राइट, कभी जूस मुस्लिम्स को मार रहे हैं, कभी हिंदूज मुस्लिम्स को मार रहे हैं, कभी बुद्धिस्ट मुस्लिम्स को मार रहे हैं, कभी क्रिश्चियन मुस्लिम्स को मार रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये बुद्धिस्ट, ये क्रिश्चियंस, ये जूस, ये एथियस्ट, ये हिंदूज, ये सब क्या है, ये हमारे एनिमीज है ना, ठीक है, इस्लाम के मुस्लिम्स के एनिमीज हैं। तो भाई इन एनिमीज को हमारे ऊपर पावर किसने दी, किसने दी, अल्लाह ने दी ना, राइट। अल्लाह ताला अगर इनको इजाजत ना दें तो ये तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये तो हमें नहीं मार सकते ना इस तरीके से जिस तरह से ये मारते हैं, तो ठीक। वसवसा दिया था ना, लेकिन वो शैतान मुसल्लत नहीं हो गया था आदम अलैहिस्सलाम। हम बात कर रहे हैं टू गिव पावर ओवर समथिंग, पावर ओवर यू, ठीक है, यानी कंप्लीटली हैव कंट्रोल ओवर यू, ठीक है, आपके अकीदे को खराब कर देना, आपके जो है वो अल्लाह ताला के खिलाफ, यानी अल्लाह ताला के बारे में आपका जो ईमान है उसको खराब कर देना। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा के साथ, महव्वा के साथ ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है ना, इट वॉज जस्ट ए मिसअंडरस्टैंडिंग एक्चुअली। जी वही तो आपको समझा रहे हैं कि जब पहली बार आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई थी, ठीक है, तो वो जो गलती हुई थी ना वो शैतान के वसवसे की वजह से हुई थी, ठीक है, शैतान के वसवसे की वजह से हुई थी। वसवसा जो होता है वो शैतान के हवाले कर दे, यानी हम जो बात कर रहे हैं ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे, वसवसे की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम बात कर रहे हैं गिविंग शैतान पावर ओवर यू, ठीक है, तो वो एक अलग लेवल है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला किसी को शैतान के हवाले कर दें कि अब तुम जानो शैतान जाने, ठीक है, शैतान तुम्हें जैसे बहकाना चाहे वो बहकाए, ठीक है, वो एक अलग ही लेवल है। वो होता है जब हम शैतान की बात मानते हैं और जो रिमाइंडर्स करवाने वाले लोग होते हैं उनकी उनके बात को रिजेक्ट कर देते हैं, उनके दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है, तब शैतान के अल्लाह ताला हमें हवाले कर देते हैं, ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा नहीं हुआ, आदम अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ था कि शैतान ने आकर के उनके उनके जहन के अंदर एक वसवसा डाला था, ठीक है, और उनको ये मिसअंडरस्टैंडिंग दे दी थी कि ये जो फ्रूट है ना जन्नत के अंदर, ठीक है, इस फ्रूट को अगर तुम खा लोगे तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे, तुम हमेशा हमेशा अल्लाह ताला के करीब रहोगे, ठीक है, तो ये एक मिस अंडरस्टैंडिंग आदम अलैहिस्सलाम को हो गई थी, ठीक है, इसको वसवसा कहते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से अल्लाह ताला सजा नहीं देते, इसकी वजह से अल्लाह ताला बड़ी सजा नहीं देते इंसान को, छोटी मोटी सजा तो मिल जाती है इसकी वजह से, लेकिन बड़ी सजा नहीं मिलती। आप जिस वसवसे की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एट ऑल, वी आर टॉकिंग एट अ मोर सीरियस लेवल, जबकि हम इतनी गलती करते हैं, इतना ज्यादा गलत काम करते हैं कि शैतान को अल्लाह ताला ना हमारे ऊपर अथॉरिटी दे देते हैं। अथॉरिटी देने का मतलब होता है कि देन शैतान बिकम्स ए ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, देखें आप गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, सही है, आप गाड़ी में सारे के सारे पूरी फैमिली बैठी हुई है, ठीक है, तो अब आपका एक फ्रेंड, सो कॉल्ड जो फ्रेंड है ना, वो बराबर में अपनी गाड़ी लेकर के आता है, ठीक है, और आपको कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, आप कहें कि जी मैं तो जा रहा हूँ फलानी जगह पे, ठीक है, मैं जा रहा हूँ रियाज गैलरी जा रहा हूँ, ठीक है, तो अब वो कहे आपको कि तुम रियाज गैलरी क्यों जा रहे हो, तो आप कहें कि जी मैं रियाज गैलरी से जा रहा हूँ ताकि मैं जा करके ना अपनी जो एसेंशियल ग्रोसरीज हैं घर की वो लेकर के आ जाऊँ, तो वो आपको कहे कि भाई तुम क्या एसेंशियल ग्रोसरीज के पीछे पड़े हुए हो, तुम ऐसा करो ना तुम चले जाओ फलाने जगह पे, तो मॉल चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे तुम जा करके कुछ स्पोर्ट्स वगैरह खेल लो, ठीक है, तुम ग्रोसरीज करने के लिए क्यों जा रहे हो, ठीक है, तो वो आपको कहे कि भाई तुमको अम्मी ने भेजा है, तो छोड़ो अम्मी की बात को, क्या ग्रोसरीज ग्रोसरीज के तुम पीछे पड़े हो, तुम जाओ जा करके वहाँ पे क्या नाम है उसका, कहाँ जाते हैं भाई वहाँ जा करके स्केटिंग करके आ जाओ, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे कि आपका जो ये जो सो कॉल्ड फ्रेंड है ना, ये आपके दिल के अंदर वसवसे डालता है, ठीक है ना, ही इज गिविंग यू रॉन्ग आइडियाज, ठीक है, ही इज गिविंग यू रॉन्ग आइडियाज, आपकी अम्मी ने आपको एक काम के लिए भेजा है, घर में ग्रोसरीज की जरूरत है, तो वो कह रहा है कि नहीं नहीं तुम छोड़ो उसको, तुम जाओ जा करके जरा स्केटिंग करके वापस आ जाना, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वसवसा, ठीक है, तो ये वसवसा क्या है आपके दिल में आया, लेकिन अब आप जो है ना इफ यू आर यानी गुड देन यू विल बी एबल टू फाइट इट ऑफ, ठीक है ना, आप कहेंगे नहीं अम्मी ने जो काम किया ना मुझे वो करना जरूरी है, ठीक है, मैं इस दोस्त के सो कॉल्ड जो दोस्त मेरा बन रहा है मैं उसकी बात को इग्नोर करता हूँ, मैं अम्मी का काम पहले करूंगा बिकॉज दैट्स इम्पोर्टेंट, तो ये कहलाता है वसवसा देना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, ठीक है, इसका जो यानी ज्यादा बुरा तरीका क्या है वो ये है कि जो आपका फ्रेंड आया ना, ठीक है, अब ये जब आपके पास आया, ठीक है, तो अब आपने उसको ये कहा कि भाई आप इतने अच्छे मेरे दोस्त हैं, आप ऐसा करें कि ये जो मेरे मेरे जो गाड़ी का स्टेयरिंग है ना, ठीक है, आप ऐसे करें ड्राइविंग सीट पे बैठ जाए, ठीक है, आप बैठ जाए ड्राइविंग सीट के ऊपर, अब आप जहां मुझे लेके जाना चाहेंगे आप लेके जाएं मुझे, ठीक है, तो वॉट विल दिस बी कॉल्ड, दिस विल बी कॉल्ड कि यू हैव गिवन योर सेल्फ अप टू योर फ्रेंड, ठीक है ना, अब वो आपको वसवसे नहीं दे रहा, वो एक्चुअली आपको ड्राइव कर रहा है, ठीक है ना, यू हैव पुट हिम ऑन द ड्राइविंग सीट, ठीक है ना, तो दिस इज वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट वसवसा, आदम अलैहिस्सलाम और हवा के साथ जो हुआ था मावा के साथ वो वसवसे वाला मामला हुआ था, ठीक है, और वो हर इंसान के साथ होता है, ठीक है, चाहे वो नेक हो चाहे वो कम नेक हो चाहे वो ज्यादा नेक हो चाहे वो बुरा हो, शैतान वसवसे तो हर एक को डालता है, लेकिन जो ज्यादा बुरे होते हैं यानी जो कि रिबेलियसनेस के ऊपर आ जाते हैं ना, तो उनके साथ मामला ये होता है कि शैतान उनकी ड्राइविंग सीट पे आकर के बैठ जाता है, ठीक है, तो जब ड्राइविंग सीट पे आ जाता है ना तो फिर वो शैतान उनसे बड़े बड़े गुनाह करवाता है, ठीक है, और गुनाह का एहसास ही खत्म हो जाता है उनको, उनको रिमोर्स ही फील नहीं होता, ठीक है, और इस तरीके से करवाते करवाते इवेंचुअली वो उनके ईमान को इफेक्ट करना शुरू हो जाता है, ठीक है, ईमान के बारे में डाउट्स डालना शुरू हो जाते हैं कि ये जो पता नहीं बाकी सारी चीजें ठीक है मरने के बाद जिंदा कैसे होंगे ये तो समझ में नहीं आता, ठीक है ना, तो ये हुआ था इन लोगों के साथ, बैदूसिस के नेशन के अंदर जो कुछ लोग थे ना जो कि ईमान के खिलाफ होना शुरू हो गए थे उनके साथ ये वाला मामला हुआ था, ठीक है, ठीक है, गुस्सा समझ में आया, फर्क समझ में आ गया इन दोनों के अंदर ना, इंशाल्लाह ये एग्जाम्पल याद रखिएगा कि वसवसे का मतलब क्या होता है और ड्राइविंग सीट के ऊपर शैतान को बिठा देने का मतलब क्या होता है, तो इस तरीके से फिर ये मामला हुआ था कि फिर बैदूसिस ने अल्लाह ताला से दुआ करी थी कि मेरे कुछ लोगों का ईमान खराब हो रहा है तो आप मेरी मदद कीजिए, आप किसी भी तरीके से मामले को सॉल्व कर सकते हैं, तो इट इज़ अप टू यू या अल्लाह, तो अल्लाह ताला ने फिर 309 ईयर्स इन लोगों को सुनाने के बाद एकदम से इनको जगा दिया, और जगाने के बाद ये सारा मामला हुआ जो कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कि वही यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था ना कि उनका एक आदमी तमलीखा था तो उसको उन्होंने पैसे दे करके भेजा कि भाई हमें भूख लगी है तो लेट्स गेट टू द पॉइंट कि भाई भूख का इलाज करना चाहिए बजाय इसके कि हम ये सोचते रहें कि हम कितने साल यहाँ पे सोते रहें या कितनी देर सोते रहें, तो वो गया फिर पैसे लेकर के और फिर वहाँ पे जा करके जब उसने 300 ईयर्स पुराना कॉइन जब दुकानदार को दिया तो दुकानदार ने कहा कि पता नहीं ये तो लगता है कोई ट्रेजर इसको हाथ आ गया है कहीं से इसने चोरी कर लिया है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन होगा तो वहाँ से जाकर चोरी कर लिए हैं कॉइन्स, तो उसने फिर दूसरों को बताया तो दूसरों ने कहा कि हाँ इसका कुछ करना चाहिए, तो फिर सारे जो शॉपकीपर्स थे उन्होंने तमलीखा को पकड़ा और उसको पकड़ के किंग के पास ले गए, और किंग के बारे में फिर हमने काफी सारी बात करी थी कि ये जो किंग था ये अच्छा आदमी था, ये अच्छा लीडर था, ठीक है। तो इसकी बात हमें कैसे पता लगती है तफसीर से, कि इसको मालूम था कि पुराने ज़माने में एक किंग हुआ करता था और वो किंग जो था वो बड़ा जालिम था, और उसके दौर के अंदर चंद नेक लड़के थे वो ईमान लेकर के आ गए थे, फिर वो उस किंग के जुल्म से अपने आप को बचाने के लिए, अपने ईमान की हिफाजत के लिए वो भाग गए थे और कहीं जा कर के छुप गए थे, और फिर उनके बारे में कुछ जो लेगेसीज मशहूर थी कि जी वो सो रहे हैं और किसी केव के अंदर हैं, ये सारी बातें इस किंग को मालूम थी, ठीक है। तो ही वॉज ए लर्नड पर्सन, ठीक है। तो इससे हमने फिर ये बात समझी थी कि जो जो लीडर्स होते हैं किसी भी नेशन के, ये लीडर्स जो है ना वो नेशन के दूसरे लोगों के मुकाबले में ज्यादा लर्नड होना जरूरी है, ठीक है। अब वो यानी अगर वो नेक होंगे तो वो अपनी इस नॉलेज को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो बुरे होंगे तो वो अपनी इस नॉलेज को बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन लीडर बनने के लिए नॉलेज होना शर्त है, बगैर नॉलेज के कोई लीडर नहीं बन सकता, ठीक है। और फिर हमने इसमें ये भी बात करी थी कि अगर आप किसी को देखें कि वो किसी मुल्क का लीडर तो बज़ाहिर नजर आता है लेकिन नॉलेज वॉलेज उसके पास कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये कौम जो पूरी है ना, पूरी की पूरी नेशन, ये पूरी की पूरी नेशन दरअसल एक इलिटरेट किस्म की नेशन है, इसी वजह से अल्लाह ताला ने इसको एक इलिटरेट किस्म का लीडर अदा कर दिया, ठीक है। तो लीडर जो होता है वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन होती है नेशन की, अगर नेशन अच्छी अच्छी क्वालिटीज वाली होगी तो अल्लाह ताला उसको अच्छा लीडर भी अता करेंगे, अगर वो नेशन बुरी क्वालिटीज वाली होगी तो अल्लाह ताला उसको बुरा लीडर भी अता करेंगे, ठीक है। तो ये किंग के बारे में चंद बातें करी थी। इसके बाद फिर एक और पॉइंट जो जहन में आया था वो ये कि जब ये तमलीखा किंग को दे करके वापस अपने केव में जा रहा था, ठीक है, तो वहाँ पर जाने से पहले इसके जहन में एक बात आई, ठीक है, वो ये कि जी मैं अगर किंग को और इतने सारे लोगों को साथ लेकर के केव के अंदर एंटर हो जाऊँगा ना तो मेरे जो साथी हैं वो समझेंगे कि जैसे कि लोगों ने अटैक कर दिया हमारे, इसलिए कि वो तो यही समझ रहे हैं कि हम एक दिन सोए हुए थे और अब जाग गए हैं, तो वो तो समझ रहे हैं कि बाहर तो हमारी एनिमीज रहते हैं, तो अगर इतने सारे लोग आ गए तो वो उसको अपने खिलाफ एक अटैक कंसिडर करेंगे, तो हो सकता है कि वो कोई रिएक्शन में कोई गलत काम कर जाए, ठीक है, हो सकता है वो अंदर से जाए वो उन लोगों को अगर कोई वेपन्स है उनके पास तो वेपन से काउंटर अटैक कर दें या पत्थर मारना शुरू कर दें, कुछ भी कर दें जो अपने आप को सेफ करने की कोशिश करें। तो तमलीखा ने इस बात को समझ लिया कि ये अच्छा आइडिया नहीं है कि हम सारे के सारे एक साथ एंटर हों, ठीक है। तो उसने जो है ना फिर ये सजेशन जो है वो किंग के सामने रखा कि दिस डज नॉट सीम लाइक अ गुड आइडिया कि ऑल ऑफ अस शुड एंटर द केव एट वंस, ठीक है। तो किंग ने उसके इस सजेशन को मान लिया, ठीक है। देखें ये एक अनदर, ये एक और क्वालिटी है एक अच्छे लीडर की, ठीक है। अच्छा लीडर वो नहीं होता कि जो कि हर वक्त जो है वो अपना हुक्म देता रहे, ठीक है, और कहे कि जी मैं लीडर हूं तो एवरीवन इज सपोज टू ओबे मी, नो वन इज हैज द राइट टू प्रपोज समथिंग डिफरेंट टू मी, गिव मी एनी आइडियाज, गिव मी एनी सजेशन, ठीक है। ये अच्छा लीडर नहीं होता, बल्कि अच्छा लीडर जो होता है ही इज ऑलवेज ओपन टू सजेशंस, ओपन टू आइडियाज फ्रॉम पीपल हु आर हिज सब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके जो लोग हैं अवाम हैं वो तो बेचारे आम लोग हैं, लेकिन अच्छा आइडिया कहीं से भी आए, अ गुड लीडर्स क्वालिटी इज दैट ही विल ऑलवेज बी एक्सेप्टेबल और रिसेप्टेबल टू अ गुड आइडिया, ठीक है। लेकिन जो डिसीशन होता है ना वो डिसीशन लीडर ने लेना होता है, ठीक है। तो लीडर का काम होता है आइडियाज यानी मशवरे जो है वो लोगों से लेना, लेकिन डिसीशन जो है वो फाइनल उस लीडर का होता है। अब लोगों के ऊपर ये जरूरी होता है कि वो लीडर के डिसीशन को फॉलो करें, ठीक है, चाहे वो उनकी सजेशन के मुताबिक वो डिसीशन हो चाहे उनके सजेशन के मुताबिक वो डिसीशन ना हो, फिर भी उनको फॉलो करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड गुड डिसिप्लिन, ठीक है। और ये गुड डिसिप्लिन जो होता है यही एक अच्छे कौम की और अच्छे लीडर की निशानी होती है, ठीक है। तो इसने इसकी बात को मान लिया और ये बाहर ही रुक गया, ठीक है। और बाहर रुकने से क्या हुआ कि मामला बहुत आसान हो गया, कोई इस किस्म का केओस नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, बल्कि आसानी से मामला तय हो गया। वो अकेला अंदर गया, अंदर जाकर के उसने लोगों को बताया और फिर वो लोग जो है बड़े खुश हुए और उन्होंने अल्लाह का शुक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, वो सारे के सारे बाहर आए, बाहर आकर के वो किंग से मिले, ठीक है, और किंग की भी दुआ कबूल हो गई क्योंकि किंग ने भी दुआ करी थी कि अल्लाह इन लोगों से मुझे मिलवा दे, ठीक है। तो हमने ये बात भी बल्कि पिछली क्लास में डिस्कस करी थी कि नेक लोगों से मिलना, ठीक है, یہ بھی نیکی کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کری نا اس نے داؤد کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ بھائی مجھے ان لوگوں سے آپ ملا دیں, ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی نیکی کی نشانی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے نیکوں کی صحبت عطا فرما دے, لوگوں کے ساتھ ساتھ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں, جیسے اس کنگ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. تو پھر اس کے بعد پھر کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ یا تو یہ ہوا کہ وہ لوگ اپنے کیف سے باہر نکلے اور کنگ سے جو ہے ملاقات ہوئی, اس کے بعد انہوں نے کنگ سے ایکسکیوز کیا کہ بھئی ہمیں کیف میں واپس جانے دو, ٹھیک ہے, ہم ابھی تھوڑا دن اور اس طرح سے رہنا چاہتے ہیں, یا وی نیڈ سم مور ٹائم, ٹھیک ہے. تو وہ واپس گئے, اور جب وہ واپس کیو میں گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی, ٹھیک ہے. ناؤ دے فائنلی ڈائیڈ اینڈ پاسڈ اوے, ٹھیک ہے. لیکن جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا کہ وہ لوگوں کے سامنے آ گئے, اور لوگوں کو چونکہ پتا تھا, ٹھیک ہے, اگر ایسا ہوتا نا کہ لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہ ہوتا کہ بھئی یہ اصحاب کہف تھے اور اتنے عرصے سے وہ سو رہے ہیں, تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا نا, بھئی یہ چند لڑکے اٹھ کر کے آ گئے, ہو نوز کہ یہ کہاں سے آئے ہیں, یہ کون لوگ ہیں, کیا اس کا تعلق قیامت کے ساتھ, دوبارہ زندہ ہونے کے ساتھ. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ پیپل نیو اباؤٹ اٹ کہ یہ ایسا ایسا ہے, یہ لوگ اتنے عرصے سے سو رہے ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں وہ ان کی باڈیز اللہ تعالیٰ نے پرزرو بھی کر کے رکھی ہوئی, ٹھیک ہے. کیونکہ پچھلی آیات کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اگر تم ان کو جا کر کے دیکھتے تو تم ان سے ہیبت زدہ ہو کر کے وہاں سے واپس آ جاتے. یعنی لوگ جو ہے نا وہ جاتے ہوں گے سرچ میں کہ بھئی ہم بھی جا کر کے دیکھیں کیو کے اندر لوگ کدھر سو رہے ہیں, لیکن جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہوں گے تو اصحاب کہف کو دیکھ کر کے ان کے اوپر ایسا روب تاری ہوتا ہوگا, ایسی اور ان کے اوپر آتی ہوگی کہ وہ وہاں سے الٹے پیر واپس چلے جاتے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھایا بھی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے, لوگ سو رہے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں کو اٹھایا تو پھر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے کہ آسانی کے ساتھ لوگوں کو اتنے عرصے جب تک جو ہے وہ پرزرو بھی کر کے رکھ سکتے ہیں, اور آسانی کے ساتھ ان کو واپس بھی لا سکتے ہیں اس دنیا کی زندگی کے اندر, ٹھیک ہے. تو مقصد پورا ہو گیا, اور پھر جب مقصد پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ sticks to the purpose, ٹھیک ہے. یعنی جو جس بات کا مقصد ہے نا اللہ تعالیٰ اتنا ہی کام کرتے ہیں, بے مقصد کام نہیں کرتے, ٹھیک ہے. ہماری کیا ہماری ایک غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت سارے کام جو ہے نا وہ بے مقصد کرتے ہیں, نو آبجیکٹو, ٹھیک ہے, ایسے ہی جو ہے وہ کچھ کام کیے چلے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, پتہ نہیں ہمیں فائدہ بھی ہوگا نہیں ہوگا, تو وی ویسٹ اے لاٹ آف ٹائم, ٹھیک ہے. اینڈ بیکاز آف ویسٹنگ ٹائم وی اینڈ اپ ویسٹنگ آور انرجیز, ٹھیک ہے, آور ریسورسز, اینڈ ٹائم از دا ایکچولی دا موسٹ پریشس ریسورس, ٹھیک ہے. تو وہ کیوں ہوتا ہے, کیونکہ ہم اپنے آبجیکٹو کے اوپر فوکس نہیں کر پاتے, بلکہ ہم ڈی فوکس ہو جاتے ہیں اپنے آبجیکٹو سے, ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ از پرفیکٹ, اللہ تعالیٰ میں تو کوئی امپرفیکشن نہیں ہے, کوئی اس قسم کی غلطی کو اللہ تعالیٰ نہیں کرتے نا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کا, as soon as that purpose is met then وہ بات ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی ہوا کہ جو پرپز تھا وہ میٹ ہو گیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. اب مزید ان کو جی 500 سال اور زندہ رکھے, پھر ان کو سلاتے رہے, تو اللہ تعالیٰ نے کوئی وہ تو نہیں بنانی نا, جس طرح سے کہ ہم لوگ جو ہے وہ زو بناتے ہیں تاکہ بھی زو میں جا کر کے لوگ انٹرٹینمنٹ کریں, جانوروں کو رکھا ہوا ہے زو میں, ٹھیک ہے, وہ ایکویریم بنایا ہوا ہے کہ جی وہاں پہ فشز کو اتنا عرصہ رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ انٹرٹین ہو جا کر کے. بھائی ایک پرپز اورینٹڈ کام ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ ان جانوروں سے کچھ لرن کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو زو کی ایک اہمیت ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس سے کوئی بینیفیشل کام لینا چاہتے ہیں تاکہ انسانوں کا فائدہ ہو, ٹھیک ہے, انسانوں کی لیٹس سے کہ جی اینیملس کو اسٹڈی کرنے سے انسانوں کے کسی بیماری کے اندر آپ کوئی میڈیکیشن بنا سکتے ہیں, تو پھر تو اینیملس کو رکھنے کا فائدہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن خالی اس لیے کہ بس رکھا ہوا ہے اور کوئی اتنا پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں ان کے اوپر ان کے کھانے کھلانے پلانے کے لیے, ٹھیک ہے, تاکہ جو ہے وہ چند لوگوں کو انٹرٹینمنٹ مل جائے, تو یہ کوئی پرپز نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں معاملہ نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تعالیٰ اسٹکس ٹو دا پرپز, جو معاملہ ہوتا ہے اسی حد تک اس کو رکھتے ہیں, اور پھر جب اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ختم. جیسے کہ اس کے اوپر ایک سب سے بڑی مثال ہمیں ایک اور ملتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں اس کی, جیسا ہی اصحاب کہف کا معاملہ ہوا نا, 309 سال, ٹھیک ہے, ان کو سلایا لیکن پرپز میٹ ہو گیا کہ ایک قوم کا ایمان بچ گیا, ٹھیک ہے, عقیدہ ان کا سلامت ہو گیا, پھر ان کو ختم. بالکل اسی طریقے سے हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से भी बिल्कुल ऐसी एक मिसाल मिलती है। कोई बताएगा अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे मामला किया? यही वाला, बिल्कुल बिल्कुल यही वाला मामला। पर्पस मेट, खलास। क्या हुआ था, किसी को याद है क्लासेस में से? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें ऐसी एक मिसाल मिलती है, यही एक मिसाल मिलती है। किसी को याद है किसी क्लास में से? एक सूरत की तफसीर में हमने ये बात, हम ये बात पढ़ते हैं, सुनते हैं। एनीवन रिमेम्बर दैट? जी, किसके बारे में, क्या हो रहा है? समझ में नहीं आई, किसी को याद है? इफ एनीवन ट्राइंग टू आंसर, तो वो अगर खाली ओके करके या यस करके बता दें तो फिर आपको वेट कर लेते हैं, अदरवाइज आई विल गो अहेड एंड आंसर द क्वेश्चन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बिल्कुल ऐसे ही मामला हुआ था। तो जवाब तो बताएं, फिर हम पता लगे ना कि आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं। औरत ने पॉइजन कर दिया था, ओके, सूरह मायदा? नहीं, वो वाला तो स्टोरी इससे ताल्लुक नहीं रखती है जो आप बता रहे हैं। सूरह मायदा के अंदर ये वाला, सूरह नूर के अंदर? नहीं, सूरह नूर में ऐसा कौन सा वाली बात थी? छोटी सी सूरत है, बिल्कुल कुरान के आखिर में, सूरह अन्नसर, ठीक है? क्या है वो सूरह? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फ़त्ह وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا। छोटी सी सूरत है। इस सूरत का मतलब क्या है कि اذا جاء نصر الله والفتح, कि जब अल्लाह ताला की मदद आ गई और अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को फतह अता फरमा दी, यानी सक्सेस अता फरमा दी उनके दुश्मनों के ऊपर, ठीक है, और पूरे जो जो अरेबियन पेनिनसुला था उसको खोल दिया। फतह का मतलब होता है खोलना, यानी इस्लाम जो है वो पूरे अरब ने, कबाइल ने कबूल कर लिया, मक्का मुकरमा भी खुल गया, ठीक है, फतह मक्का हो गई, ठीक है। तो उसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कह रहे हैं कि फसब्बे बिहम्द रब्बिका वस्तग़फिर, कि तुम तस्बीह बयान करो अपने रब के नाम की और इस्तग़फार करो, इन्नहु काना तवाबा, कि वो इस्तग़फार को कबूल करता है और तवाब है। इस आयत को जब हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, राइट, उन्होंने जब इस आयत को सुना, और कुछ रिवायत में आता है कि वो बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुना, कुछ आता है कि वो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुना, खैर जब इन्होंने सुना ना, तो वो इस आयत को सुनने के बाद रोना शुरू हो गए, ठीक है, जबकि बाकी जितने लोग थे उन्होंने जब इस आयत को, इस सूरत को सुना, तो वो बड़े खुश हुए कि भाई इसका मतलब ये है कि सक्सेस मिल गई, अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान हो गया कि जी नबी अलैहिस्सलाम सक्सीड हो गए, और बड़ी तादाद में लोग जो है वो दीन के अंदर या अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएंगे, इस्लाम कबूल करना शुरू हो जाएंगे, तो वो बड़े खुश हुए। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इसको सुन करके रोना शुरू हो गए। तो लोगों ने पूछा कि ये रोने का मकाम है, ये तो खुश होने का मकाम है, आप रो क्यों रहे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था कि देखें, नबी अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था? वो मकसद ये था कि अल्लाह ताला के पैगाम को लोगों में फैला दिया जाए, ठीक है, लोगों को तैयार कर दिया जाए, दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया जाए, ठीक है, कंप्लीटली लोगों को दीन इस्लाम पहुंचा दिया जाए, ठीक है। तो ये मकसद जो था ना, वो नबी अलैहिस्सलाम का पूरा हो गया। इस सूरत में अल्लाह ताला हमें यही बता रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में भेजे जाने का मकसद पूरा हो गया है, और जब मकसद पूरा हो जाए तो फिर क्या होता है? फिर अल्लाह ताला वापस बुला लेते हैं, ठीक है ना। अब नबी अलैहिस्सलाम की दुनिया में जरूरत नहीं रही है, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम हमसे जुदा होने वाले, और ये लोग तो नबी अलैहिस्सलाम के आशिक थे, ठीक है ना, सबसे ज्यादा इनको दुनिया में मोहब्बत ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। तो जस्ट द थॉट दैट नबी अलैहिस्सलाम इज गोइंग टू लीव देम फॉर एवर नाउ और लीव देम फॉर गुड नाउ मेड देम क्राई, मेड देम वीप। بالکل یہی معاملہ ہوا جیسے کہ اصحاب کہف کے ساتھ ہوا تھا کہ مقصد پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب مقصد دنیا میں پورا ہو گیا، مقصد پورا کیا ہو گیا؟ کیا پوری دنیا مسلمان ہو گئی تھی؟ کیا اسلام جو ہے وہ یورپ میں پہنچ گیا تھا؟ کیا اسلام جو ہے وہ انڈیا میں پہنچ گیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انڈین مسلمان ہو گئے تھے کیا؟ سارے یورپین مسلمان ہو گئے تھے؟ سارے افریقن مسلمان ہو گئے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ تو نہیں ہوا تھا نا. تو کیا پتہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے، بلکہ کیا مقصد تھا جو کہ پورا ہو گیا؟ اسلام پھیل جائے. کتنا پھیل جائے؟ واٹ از دا لمٹ؟ یورپ میں تو نہیں پھیلا، عربین پیننسولا میں پھیل جائے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربین پیننسولا میں پھیلنا دس واز دا ٹارگیٹ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹارگیٹ یہ تھی. لیکن اس سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کری تھی، وہ کیا کری تھی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں اسلام پھیلا نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے نا. لیٹرز تو چلو بھیج دیے تھے کچھ کنگس کو، ٹھیک ہے، لیکن یورپ کے اینڈز میں، آئرلینڈ میں اور ایسی سے، اور افریقہ کے اینڈز میں اور انڈیا کے اینڈز میں اور چائنا میں، ساری جگہ تو نہیں پھیلا تھا نا. تو پھر کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام؟ قرآن پاک پورا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی تھی کہ اللہ کی کتاب پوری ہو گئی، پورا نزول ہو گیا قرآن کا، مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے. ویری گڈ، ویری گڈ آنسر. دی ادر تھنگ واز کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایکچولی پریپیئرڈ اے ٹیم آف صحابہ بیہائنڈ ہم، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ٹیم تھی نا، یہ ٹیم جو ہے ان کی ٹریننگ مکمل ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، ان کی ٹریننگ مکمل ہو گئی تھی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت ختم ہو گئی تھی، اب یہ جو کام ہے نا اس کو کرنے کے لیے ایوری صحابی واز پریپیئرڈ، ٹھیک ہے نا، صحابہ کو تیار کر دیا گیا تھا. اب یہ صحابہ جو ہیں اس پیغام کو لے کر کے کوئی چائنا کے اندر پہنچا، کوئی یورپ کے اندر پہنچا، کوئی افریقہ کے اندر پہنچا، ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک سلسلہ جو تھا وہ شروع ہو گیا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، ٹھیک ہے. تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ایوری ہیومن بینگ ول بیکم اے مسلم، بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ ایک تو قرآن کو مکمل کر دینا، اور دوسرا یہ کہ ایک ٹیم ایسی تیار کر دینا جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی میں اس کام کو کر سکے. اور وہ ٹیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر دی تھی. دس واز نبی علیہ الصلوۃ والسلام's گریٹسٹ اچیومنٹ، اتنی بہترین ٹیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر دی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ چند باتیں ہو گئیں، اور اس کے بعد پھر آگے جو اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. اچھا، ان آیات کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان میں بہت سارے میسیجز ہیں، بہت سارے، ٹھیک ہے. تو ہم لے لے کر کے چل رہے ہیں ایک ایک کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات جو فرمائی تھی نا، ان وعد اللہ حق، دو مین پرپزز تھے، ٹھیک ہے. ایک تو کتاب کو مکمل پہنچا دینا لوگوں تک، دوسرا ایسے بندے تیار کر دینا جو کہ اس کتاب کے میسج کو لے کر کے لوگوں تک پہنچا سکے. کتاب اللہ، اور بندوں کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بندوں کو کیا کہتے ہیں؟ Anyone? آواز نہیں آ رہی آپ کو، مجھے کیا ناصر بول رہے ہیں؟ ناس، انسان کو ناس بولتے ہیں. بندوں کو جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں عباد اللہ. انہوں نے جواب دیا، لیکن عباد اللہ کے ساتھ ساتھ ایک اور زیادہ اچھا جو ورڈ سوال کرتے ہیں وہ تو عباد اب کی جمع ہے، اس کو کہتے ہیں رجال اللہ، ٹھیک ہے. رجال کا جو لفظ ہے نا، یہ اسپیشل عباد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسپیشل بندوں کے لیے، ٹھیک ہے، جو کہ ویری ویری اسٹرانگ بندے ہوتے ہیں، ان کو عربی میں رجل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کی جمع ہوتی ہے رجال. تو ہدایت کے دو سورسز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کتاب اللہ اور دوسرا ہوتا ہے رجال اللہ. تو نبی علیہ السلام نے دونوں کام مکمل کر دیے تھے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ختم ہو گئی دنیا سے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلا لیا اپنے پاس، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ایک کوشچن یہ ہوتا ہے کہ ان وعد اللہ حق، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو سچ ہے، تو آپ جو اللہ کے وعدے کے اوپر ٹرسٹ کریں، یہ ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے نا اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ کے وعدے کے اوپر ٹرسٹ کریں، ٹھیک ہے. لیکن بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے وعدے کے اوپر کیسے ٹرسٹ کریں، جبکہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ وعدہ اس کے پاس، یہ وعدہ اس نے کیا ہے. پرامس، کسی کے وعدے کے اوپر ہم ٹرسٹ کریں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ کیا یہ وعدہ واقعی اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا. جیسے کہ आपको मैं ये कहूँ कि जी आप के जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, उन्होंने ये वादा किया है कि अगर आपका इतना परसेंटाइल आ जाए तो आपको ना उन्होंने एक यूरोप का ट्रिप करवाना है, ठीक है। तो क्या आपको पता है कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने वादा किया है कि नहीं किया? आपको तो नहीं पता, मैंने आपको आके ये बात बता दिया ना कि आपके प्रिंसिपल ने वादा किया है। तो अब आप ने तो प्रिंसिपल की जुबान से बात ही कभी नहीं सुनी, तो आप कैसे ट्रस्ट करें कि जी आपके प्रिंसिपल ने वाकई वादा किया है कि मैं ऐसी झूठ बोल रहा हूँ, कि मैं ऐसी, आई एम जस्ट मेकिंग थिंग्स अप। तो यहाँ पर भी तो ये हो रहा है ना कि अन्ना वादुल्लाह हक्कुम, तो भाई अल्लाह ताला ने ये वादा किया भी है कि नहीं किया है, हाउ डू द पीपल नो? पीपल हैव नेवर सीन अल्लाह, ठीक है ना, नो वन हैज एवर सीन अल्लाह, नो वन हैज एवर हर्ड अल्लाह, ठीक है, नो वन हैज एवर टॉक टू अल्लाह एक्सेप्ट मूसा अलैहि सलाम, वो भी ठीक है, उन्होंने भी बगैर देखे भी अल्लाह ताला से बात करी थी ना, उन्होंने भी देखा तो नहीं था अल्लाह ताला को। तो आपकी तो किसी ने अल्लाह ताला को देखा नहीं, सुना नहीं, अल्लाह ताला की आवाज़ कभी नहीं सुनी, कभी मुलाकात नहीं करी अल्लाह से। तो ये वादा अल्लाह के ऊपर इतना जो जो एक्सपेक्टेशन है कि जी आप बिलीव करें अल्लाह के वादे के ऊपर और उसको सच मान लें, और ये तो हाउ इज इट पॉसिबल कि यू कैन नॉट इवन नो कि वेदर दिस वादा हैज एक्चुअली कम फ्रॉम अल्लाह और नॉट। तो ये जो अल्लाह का वादे वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कि ये अल्लाह का वादा होता क्या है और ये अल्लाह ताला का वादा हम तक पहुंचता कैसे, ठीक है। तो इस वजह से इसकी रियलिटी को ना हमें समझना जरूरी है कि जब अल्लाह के वादे की बात की जाती है, ठीक है, तो ये अल्लाह का वादा जो है वो दरअसल क्या होता है, इन रियलिटी वो क्या होता है, वो कैसे हम तक पहुंचता है। अल्लाह ताला की आवाज हम तक डायरेक्टली नहीं पहुंचती, ठीक है, कुरान कुरान कैसे पहुंचता है हम तक? आपके पास एक किसी ने आकर के आपको एक बुक पकड़ा दी और आपको कहा कि ये अल्लाह की किताब है, ऑडियो नो के अल्लाह की किताब, उसके अंदर अगर अरबी में कुछ लिखा होगा तो अरबी में तो न्यूज़पेपर भी होता है, अरबी के अंदर तो कोई पैम्फलेट भी होता है, कोई म्यूजिक के लिरिक्स भी हो सकते हैं अरबी के अंदर, राइट। तो अरबी में हर चीज़ को आप कुरान तो नहीं कह सकते, कोई भी अरबी की किताब आपको ला के देगा आप कहेंगे हाँ वाकई ये कुरान अल्लाह की किताब है, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो अल्लाह ताला के वादे पर उसके ऊपर हाँ उसके अंदर एक ऐसा कलाम होता है जो कि बंदा नहीं बना सकता। एक हद तक तो ये बात ठीक है कि उसके अंदर एक ऐसा स्टाइल होता है कि जो कि बंदा वो कलाम लिख नहीं सकता, लेकिन आपको आकर के कोई अरबी की ऐसी कोई किताब दे तो विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई कि दिस टेक्स्ट इज सो यानी प्रोलिफिक कि नो ह्यूमन बीइंग कैन क्रिएट सच अ टेक्स्ट। आपको तो इतना पता ही नहीं है, आपको तो अरबी की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको तो पता ही नहीं लगेगा कि ये ऐसा टेक्स्ट है कि कोई इंसान बना सकता है, कि ऐसा टेक्स्ट है कि कोई इंसान नहीं बना सकता, यू कैन नॉट टेल कि डेप्थ, हमें तो डेप्थ ही नहीं पता ना, आपको पता है, आप तो वैसे भी बहुत छोटे हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई हम जैसा भी हो 40 ईयर्स का हो 50 ईयर्स का हो, तो हमें तो अरबी जबान इतनी आती नहीं है कि हम उसको कह सकें कि वाकई ये तो बंदे का कलाम नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह का कलाम। भाई इस लेवल ऑफ नॉलेज के लिए या इस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्सपर्ट इन द अरबिक लैंग्वेज, ठीक है। तो भाई अल्लाह ताला सिर्फ वेरी वेरी एक्सपर्ट से तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि वो कुरान को अल्लाह की किताब माने, अल्लाह ताला तो एक नॉर्मल से इंसान से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी कुरान को अल्लाह ताला की किताब माने, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी किसी ने जवाब लिखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो ये जो बात होती है ना कि अन्ना वाद अल्लाह हक्कों के, अल्लाह का वादा सच है, तो अल्लाह का वादा का मतलब ये है कि जो अल्लाह के प्रॉफिट आकर के तुम्हें बता रहे हैं वो सच है, ठीक है। तो प्रॉफिट की बात को मानना, प्रॉफिट की बात के ऊपर ईमान लाना, उसको सच मानना, तो इससे क्या पता लगा प्रॉफिट की बात का आपको नहीं पता ना कि वो सच है कि नहीं है, नहीं उसका आपको पता है, प्रॉफिट का आपको कैसे पता है कि کیونکہ پروفٹ جب اللہ تعالیٰ بیچتے ہیں نا کسی شخص کو بنا کر کے, تو اس سے پہلے کہ وہ اپنی پروفٹ ہوڈ کا اعلان کرے کہ میں پروفٹ ہوں, ٹھیک ہے, میرے اوپر وہی آتی ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرتے ہیں, یا میرے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میسنجر بھیجتے ہیں, وہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ سب اعلان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس پروفٹ کو لوگوں کے درمیان رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کے درمیان اس کو رکھتے ہیں تاکہ لوگ اس پروفٹ کو دیکھیں, ٹھیک ہے, اور اس پروفٹ کو دیکھ کر کے وہ اس سے امپریس ہو جائیں اور وہ سمجھ لیں کہ یہ جو پروفٹ ہے نا, یہ پروفٹ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ جھوٹ نہیں بولتا, جو کہ جھوٹ نہیں بولتا, اس کی کوئی بھی بات جھوٹی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, یہ سچا ہے, ٹھیک ہے, یہ امانت دار ہے, یہ خیانت نہیں کرتا باتوں کے اندر, ہی از ٹرسٹ وردی. اس لیے کہ اس نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا, ٹھیک ہے, دو باتیں ہوتی ہیں, ایک تو پروفٹ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا, اگر آپ نے اس پروفٹ کو نہیں دیکھا نا تو آپ کو نہیں پتا کہ اس نے سچ بات کری ہے کہ نہیں, تو ہم اس وقت آپ کی بات تو کر ہی نہیں رہے, ٹھیک ہے, ہم تو بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی کہ جن کے سامنے پروفٹ آتے ہیں, ہم ابھی پہنچے نہیں ہیں, انشاءاللہ بعد میں پہنچیں گے آپ تک, ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی کہ جن کے سامنے پروفٹ آئے تھے, ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کو جو کہا جاتا ہے نا کہ تم اللہ کے وعدے کو مانو, تو ان لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے وعدے کو مانو کہ جو تمہیں یہ پروفٹ کہہ رہا ہے تم اصل میں اس پروفٹ کی بات کو مانو, ٹھیک ہے, تو ان لوگوں نے اللہ کی بات کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروفٹ کی بات کو مانا, کیونکہ اللہ نے اس پروفٹ کے ساتھ ان کو ایکسپوجر دیا ہوتا ہے, ٹائم دیا ہوتا ہے کہ وہ اس پروفٹ کو دیکھیں, اس کو جانیں کہ یہ بندہ کیسا بندہ ہے, ٹھیک ہے, یہ سچ بات کرتا ہے یا یہ جھوٹ بھی بولتا ہے, ٹھیک ہے, یہ کبھی امانت میں خیانت بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا, تو اس طریقے سے وہ لوگ جو ہے نا اس کی ہر بات کو جب مانتے ہیں نا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی دنیاوی معاملات میں وہ لوگ اس پروفٹ کی بات کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس پروفٹ کو اپنے دین کا میسج دے کر کے بھیجتے ہیں کہ اب ان لوگوں کو جا کر کے دین کی بھی بات بتاؤ, ٹھیک ہے, تو اب ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جیسے دنیا کی باتیں اس پروفٹ کی مانتے تھے اسی طریقے سے اس پروفٹ کی دین والی باتیں بھی مانیں, ٹھیک ہے نا, تو نبی علیہ السلام نے بالکل یہی کام کیا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگوں کے درمیان جو مکہ مکرمہ کے تھے ان کے ساتھ جتنا عرصہ رہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر تھا وہ اسپاٹ لیس تھا, ٹھیک ہے, صادق اور امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل بن گیا تھا, ٹھیک ہے, آل آف دوز پیپل یوز ٹو کال ہم صادق اینڈ امین, کہ ہی از دا ٹروتھفل ون اینڈ ہی از دا ٹرسٹ وردی ون, ٹھیک ہے, تو وہ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کلوزلی جانتے تھے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی اب ان لوگوں کو تم قیامت سے ڈراؤ, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا پیغام دو, بت پرستی کے خلاف ان لوگوں کو کہو کہ چیز کو چھوڑ دو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا تھا, کوئی بتائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا تھا اس کے بعد, اس کے بعد ان شاء اللہ کلاس میں کر دیں, ٹائم ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو بلایا تھا نا وہ کیسے بلایا تھا, کیا طریقہ اختیار کیا تھا آپ کے ساتھ, اینی ون, یہ ساری سیرت ہے نا, تو سیرت کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا تبھی تو بات آگے بڑھے گی, اگر سیرت کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوگا آپ سے ان کی لائف کے بارے میں تو پھر آہستہ آہستہ بتایا تھا, آہستہ آہستہ تو بعد میں بتایا تھا, پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا, ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم he called all the people together, where, اپنے گھر میں, نہیں اپنے گھر میں نہیں بلایا تھا, he climbed the hill, ٹھیک ہے, صفا کے اوپر یا مروہ کے اوپر, ان دونوں میں سے کسی, صفا کے اوپر, رائٹ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تھے, رائٹ, اور پھر لوگوں کو زور سے آواز دی تھی کیونکہ سارے وہیں پہ رہتے تھے مکہ مکرمہ میں, ٹھیک ہے, دیٹ واز دا انٹائر سٹی, اب جو ہم مسجد حرام دیکھتے ہیں نا, مسجد الحرام, ٹھیک ہے, تو وہ جو مسجد الحرام کا ایریا ہے وہ جو اس زمانے کا سٹی تھا وہ اس سے بھی چھوٹا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ سارے سارے گھر وہیں پر تھے, لوگ وہیں پہ بیٹھا کرتے تھے, صفا پہاڑ تھے, जब हम अपने ये सही शुरू करते हैं, उम्रे में आप लोग जाते हैं देखते होंगे, तो सफा पहाड़ से हमें जो है वो काबतुल्ला सामने नजर आता है, ठीक है। तो इट्स दैट फार कि आप अगर बहुत जोर से चिल्लाएं तो आपकी आवाज जो है वो काबतुल्ला तक भी पहुंच जाए, या कम अज कम आपके एक्शन को जो है वो वहां पे बैठे हुए लोग देख सकें, बिकॉज उस वक्त बिल्डिंग वगैरह होती नहीं थी, ये वो ओपन एरिया, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लाइम्ड सफा, नॉट इवन मरवा, मरवा तो बहुत दूर है, ठीक है, तो सफा पे ऊपर खड़े हुए और लोगों को या सबा इस तरीके से बुलाए, क्योंकि अरब जो थे ना वो जब लोगों को गैदर करना चाहते थे तो वो इस तरीके से आवाज दिया करते थे, और इसकी ये इस बात की निशानी होती है कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से ये शख्स लोगों को बुला रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से आवाज देनी शुरू करी तो सारे के सारे लोग गैदर हो गए, ठीक है ना, और इस तरह से गैदर हो गए कि दे वर ऑल ऑन वन साइड ऑफ द माउंटेन, चारों तरफ गैदर नहीं हुए, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फेसिंग वन वे, प्रोबब्ली फेसिंग काबतुल्ला, ठीक है, तो सारे लोग काबतुल्ला की तरफ से ही गैदर आए, गैदर होकर के खड़े हो गए, ठीक है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को क्या कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि अगर मैं तुमको ये कहूं कि इस पहाड़ के दूसरी तरफ एक एनिमी है जो कि तुम्हारे ऊपर हमला होने वाली, हमला करने वाली है, ठीक है, एक एनिमी है, तुम उसको नहीं देख सकते, मैं देख सकता हूं, बिकॉज तुम जो है वो हिल के नीचे हो, मैं हिल के टॉप पर हूं, मुझे नजर आ रहा है दोनों तरफ, तुम भी नजर आ रहे हो, मुझे उधर भी नजर आ रहा है, तुमको जो है वो सिर्फ मैं नजर आ रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन अगर मैं तुमको कहूं कि तुम्हारे एक एनिमी है जो कि हिल के दूसरी तरफ खड़ी हुई है, वो तुम्हारे ऊपर अटैक करना चाहती है, तो यू बेटर रन, यू बेटर सेव योरसेल्फ, ठीक है, या अपने घरों में जाओ, जाकर के अपने वेपन्स लेकर के आओ ताकि तुम उनसे फाइट कर सको, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे, राइट। अब ये एक ऐसी बात थी जो कि बड़ी ही अजीबोगरीब किस्म की बात थी, इसलिए कि जब कोई एनिमी आती है ना, पता तो लग जाता है आपको, ठीक है ना, आपके अपने भी कुछ लोग होते हैं जो कि बाहर के ट्राइब्स में रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, ठीक है, वो आकर के आपको इतला दे देते हैं कि भाई ये कुछ हो रहा है, या ये कि आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो कि दूसरे नेशंस के अंदर भी रहते हैं, अगर कोई नेशन आप पे अटैक करने का इरादा करती है ना, तो वो आपके फ्रेंड्स जो है ना वो आपको पैगाम किसी तरीके से पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ना कोई एनिमी अचानक से हमला नहीं कर सकती, स्पेशली ऑन अ प्लेस लाइक मक्का मुकर्रमा, विच इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस, ठीक है, अचानक से तो हमला नहीं कर सकती। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कर रहे थे ना इन लोगों को, ये बात जो थी ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी, ये बड़ी अजीब सी बात थी, ठीक है ना, अनयूजुअल सी बात थी, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ट्रस्ट कितना था इन लोगों के जहन में, कितना ज्यादा ट्रस्ट करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बात बता रहे थे, ठीक है, लेकिन जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम मेरी बात को ट्रस्ट करोगे, तो आगे से उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा यस वी विल ट्रस्ट यू बिकॉज यू आर सादिक एंड अमीन, ठीक है, यस वी विल ट्रस्ट यू इवन दो यू आर टेलिंग अस समथिंग यू नो आउटरेजियस, एकदम से कोई एनिमी आ गई, और लेकिन हमारा आपके ऊपर इतना ट्रस्ट है कि हम अनदेखी चीज जो कि हम खुद नहीं देख सकते, लेकिन आपके बताने की वजह से हम उसको मान लेंगे, क्योंकि आपका एक हमारे दरमियान एक मुकाम है, आपने ये अर्न किया है ये टाइटल सादो पर अमीन का, ठीक है ना। अच्छा, अब ये मामला कौन सा वाला मामला था, ये कोई दीनी मामला था या ये दुनियावी मामला था, इट वॉज रिलेटेड टू दिस मटीरियल वर्ल्ड, ठीक है ना, इट वॉज रिलेटेड टू दिस फिजिकल वर्ल्ड, इट वॉज नॉट रिलेटेड टू द आखिरा, टू द रिलीजन, टू द दीन, राइट। तो इस मामले में उन्होंने आपसे उनकी बात मान ली, इसी चीज को बेस बना करके आपसे सर ने कहा, उसके आगे क्या फरमाया कि तो सुन लो लोगों कि मैं तुम्हें बताता हूं कि एक दिन तुमने मर जाना है और मरने के बाद तुमने दोबारा जिंदा होना है और उस दिन फिर तुम्हारे अमाल का हिसाब होगा, ठीक है, ये क्या है, ये है वादा अल्लाह, अल्लाह का वादा कि तुम मरोगे, मरने के बाद मैं तुम्हें दोबारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लोगों को मारना, राइट, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जिंदगी से मैं वापस लेकर के आना, ठीक है, मौत के बाद दोबारा जिंदा करना, ये सारे काम किसने करने हैं, ये अल्लाह ने करने हैं, लेकिन इसका मैसेज अल्लाह ने कैसे पहुंचाया लोगों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबान से पहुंचाया, ठीक है, और डिमांड लोगों से क्या रखी कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानो, तुम इस शख्स की बात को मानो, ठीक है, तुम नहीं देख सकोगे क़यामत के दिन को, तुम अल्लाह को नहीं देख सकोगे, तुम फरिश्तों को भी नहीं देख सकोगे, तुम कुरान को उतरता हुआ भी नहीं देख सकोगे, लेकिन यू हैव टू ट्रस्ट हिम, व्हाटएवर ही सेज यू हैव टू से आमन्ना व सद्दक़ना, कि हम इसके ऊपर बिलीव करते हैं, हम इसको सच कहते हैं जो कि आप हमें बता रहे हैं, ठीक है ना, और अगर तुमने इसकी बात मान ली तो मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल करूंगा, اور اگر تم نے اس کی بات نہیں مانی تو میں تمہیں جہنم میں داخل کروں گا. تو دس از ہاؤ امپورٹنٹ پروفیٹہڈ از, دس از ہاؤ امپورٹنٹ دا پروفٹ از. ٹھیک ہے, ہماری جو کامیابی ہے ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ کے ماننے میں ہے, لیکن اصل میں کیا ہے وہ, اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جائیں تو اصل میں وہ اللہ کے رسول کی ماننے میں کامیابی. ٹھیک ہے, اور ناکامی کس میں ہے, اللہ کے رسول کی نہ ماننے میں ناکامی. ٹھیک ہے, تو یہ وعدہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے وعدہ, وعدہ رسول اللہ, اللہ کے رسول کے وعدہ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک معاملہ تھا ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایکسپوجر تھا. اور جیسے کہ ہمارے بھائی مصطفیٰ صاحب نے یہاں پہ سوال کیا تھا کہ جنہوں نے کہ اللہ کے رسول کو ہی کبھی نہ دیکھا تو وہ پھر کس چیز کو مانے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر جو ہے نا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دو باتیں ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی, جو دو سورسز آف ہدایت ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں جو نیک لوگ رہتے ہیں رجال اللہ, ٹھیک ہے, جو کہ علماء اور مشائخ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, رجال اللہ کو مانے, ان کی بات مانے. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے آسانی کے لیے اور کیا رکھ دی ہے, کتاب اللہ. ٹھیک ہے, وہ لوگ جو کہ مکہ مکرمہ میں تھے ان کے پاس کون سی کتاب اللہ تھی؟ کوئی کتاب اللہ نہیں تھی, تب تو کتاب اللہ آئی نہیں تھی. اقرا بسم ربک الذی کی 5 آیات آئی تھی ٹوٹل. ٹھیک ہے, وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان تھی, وہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پرنٹ کروا کے لوگوں تک تو نہیں پہنچایا تھا کہ دیکھو جی کتنی اچھی عربی ہے اس کے اندر اور کتنی تم اس کو کریٹ کر سکتے ہو یا نہیں کریٹ کر سکتے, یہ ساری باتیں تو کچھ بھی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی چند آیت آ گئی تھی, وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنٹ کروا کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹنگ کری تھی. تو کتاب اللہ تو تھی نہیں نا اس زمانے میں, اس زمانے میں کیا چیز تھا, صرف رجال اللہ, اللہ کا بندہ, عباد اللہ. رائٹ, ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ چونکہ ہمارے زمانے میں جو رجال اللہ ہیں دے آر ویری گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, دے آر ٹروتھفل ایز ویل, دے آر ٹرسٹ وردی ایز ویل, لیکن ان کا لیول نبی علیہ السلام کے لیول جیسا تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, تو لیول میں کمی تو آ گئی ہے, تو اب اس کمی کو اللہ تعالیٰ نے کمپنسیٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈیمانڈ تو ہم سے بھی وہی ہے نا جو کہ اس زمانے کے کافروں سے ڈیمانڈ تھی. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اے اللہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی بھائی. رائٹ, ان کو تو آپ نے اللہ اپنے نبی دے دیے اور ہمیں تو آپ نے نبی نہیں دیے, لیکن ایکسپیکٹیشن ہم سے بھی وہی ہے جو کہ ان سے, تو یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ تو صحیح نہیں ہے. رائٹ, دس از ناٹ فیئر, اس طرح کی بات ہم کرتے ہیں. رائٹ, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپنسیٹ کیسے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی جو کتاب ہے نا وہ بھی ہمیں عطا فرمائی, اور اس کتاب کی پھر ماشاء اللہ سائنٹیفک میریکلز اور قرآن بھی عطا فرماتی. صحابہ کے پاس تھے کوئی سائنٹیفک میریکلز اور قرآن؟ کوئی بھی نہیں تھے. رائٹ, ہمیں ہمارے زمانے میں جہاں رجال کی کوالٹی میں کمی آئی ہے وہیں کتاب کی انڈرسٹینڈنگ اور کتاب کی جو جو ایسی باتیں ہیں جو کہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بندہ تو یہ بات کر ہی نہیں سکتا اس قسم کی, میڈیکل میریکلز آف دا قرآن اور ایسٹرونومیکل میریکلز آف دا قرآن اور قرآنی میریکلز آف دا قرآن. رائٹ, تو یہ ساری چیزیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمپنسیشن ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہماری آخری بات آج کی کلاس کی یہ ہوئی کہ وعد اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے وعدے کے اوپر ٹرسٹ کرنا, اور اس وعدے کے اندر پھر آگے ہم جو نیکسٹ بات کریں گے اگلی کلاس میں وہ یہ کریں گے کہ یہ جو فرمایا نا لا ریب فیہا. ٹھیک ہے, تو ریب کا ترجمہ ویسے تو ڈاؤٹ سے کیا جاتا ہے, لیکن اصل میں ریب کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یعنی یہ جو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو یہ کس قسم کا ڈاؤٹ ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ریب فیہا. تو یہ ڈسکشن ان شاء اللہ پھر ہم کلاس میں کریں گے. کسی کو کوئی سوال ہو تو آپ ابھی پوچھ لیجیے, ویسے کلاس کا ٹائم اوور ہو چکا ہے, تو جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے, تو پوچھنا چاہے وہ ابھی بھی پوچھ سکتا ہے. ماشاء اللہ ہمارا زوم سسٹم بھی آج ٹیسٹ آف ٹیسٹ بھی ہو گیا اور سکسیزفلی ماشاء اللہ کلاس بھی ہوگی اس کے اوپر, تو آئندہ سے ہماری کلاسز جو ہے سپر ہوں گی, ان پر گرلز بھی سپر ہوگی, باقی بھی جو 100 ایڈلٹس کلاسز ہوگی.